समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, गुड आफ्टरनून, एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। टू ऑल द लिसनर्स, आई एम तन्वी खुराना, एज माय को एंकर आकर्षिता हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, एंड दिस एंटायर प्रोग्राम इज अ मिक्स ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी time, let's get started with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और विदेश मंत्रियों तथा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
DGMOs of India and Pakistan to talk this evening to discuss modalities after the two countries ceased hostilities.
अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से खोला गया।
Market surged by over 3% as border tensions cooled.
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुर्की में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की।
विराट कोहली अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, मार्किंग द एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन क्रिकेट।
आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And first we'll talk about International Nurses Day and also Budh Purnima. Today is International Nurses Day. On this day we honor the incredible contributions of nurses across the globe. It is a global tribute to the strength, compassion and unwavering dedication of nurses who form the backbone of our healthcare systems. Their unwavering dedication and tireless efforts in caring for the sick and those in need of medical attention make a profound impact every day.
अपनी हर तकलीफ को भुलाकर दूसरों की तकलीफ में हौसला बढ़ाती हैं, अपने जख्मों को छोड़कर दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती हैं, तभी तो वे नर्स कहलाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिवस आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता मानी जाती हैं। प्रेम, दया व सेवा भावना की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगल द लेडी विद द लैम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी और नर्सिंग को एक पेशेवर अनुशासन के रूप में स्थापित किया। नर्सों का कल्याण सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी रही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर वर्ष इस महत्वपूर्ण दिवस को आता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। और तन्वी, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जब भी हम बीमार हो जाते हैं या जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमारी सेवा करने वाला, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है, तो हम डिपेंडेंट होते हैं नर्सों पर, और ये नर्सें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हमारा कोई भी नहीं होता तो ये होती हैं और इतनी समर्पण और सेवा भाव से ये अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं कि आज वो मौका है कि हम इनको सेलिब्रेट करें, इनको इनसे थैंकफुल हों।
Absolutely. And those are just not the doctors that we are thankful for, but the nurses get equal credit. And Florence Nightingale's legacy continues to inspire generations of nurses, making 12th of May, that is this day, a symbolic day to reflect on the profession's evolution and impact. This day aims to give recognition to nurses' influence on the economy, society and culture, while encouraging their acceptance, support and inclusion on a global scale. This year, the theme of International Nurses Day is Our Nurses, Our Future. Caring for nurses strengthens economies, just like Akarshita has mentioned already. And this theme underscores the critical role a healthy nursing workforce plays in strengthening economies, improving health systems, and ensuring better outcomes for communities worldwide.
और आइए अब जानते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में. 1953 में अमरीकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की प्रतिनिधि डोरोथी सदरलैंड ने पहली बार नर्सों के सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार प्रस्तावित किया था. उन्होंने राष्ट्रपति ड्विट डेविड इसनहोवर को यह सुझाव दिया. 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा स्थापित किया गया था, हालांकि उस समय प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था. साल 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन को औपचारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए चुना गया. तब से 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है.
The observance of this day is a powerful reminder to celebrate the commitment and tireless service of nurses worldwide. It also brings attention to the need for better working conditions, training and policy reforms that support the nursing profession. It educates communities about the multifaceted role nurses play, from clinical care to emergency response, mental health support, community outreach and much more. Above all, it motivates young individuals to consider nursing as a meaningful and rewarding career path. On this International Nurses Day, we salute the unsung heroes who show up every day with compassion and courage. In the ever-evolving landscape of global health, their role is more critical than ever. As we mark this day, let us not only honor their past contributions, but also commit to empowering and supporting the future of nursing. Budh Purnima is being celebrated across the world today.
Budham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami.
सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं. आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है. आज बुद्ध पूर्णिमा है. गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था. उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे और अहिंसा, प्रेम तथा दयालुता का उनका संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है. त्याग और तपस्या को समर्पित भगवान बुद्ध का जीवन विश्व समुदाय को हमेशा करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा.
The sacred festival, also called Buddha Jayanti, is celebrated in most of South, Southeast and East Asia, including India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Tibet, Thailand, China, Korea, Laos, Vietnam, Mongolia, Cambodia and Indonesia. It needs to be noted that the day is observed on the full moon day of the Hindu month of Vaisakh, which falls in April or May. It needs to be noted that the day is observed on the full moon day again on the Hindu month of Vaisakh.
गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे. नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया. बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं, शांति, करुणा और ज्ञानोदय पर चिंतन करने के लिए समर्पित एक दिन है.
The festival coincides with Vaisakh, a celebration of Buddha's enlightenment, which offers a chance to spread the message of peace. The full moon holds significance in Buddhism because three significant events in Gautam Buddha's life took place on this particular day. Prince Siddharth was born at Lumbini Grove on this day. He also attained enlightenment under the shade of the Bodhi tree and became Gautam Buddha after 6 years of hardship on a full moon day. Let me ask you, Akarshita, have you been been to Budh Bodh Gaya and saw that tree where Gautam Budh took enlightenment?
No, but I would like to. और सबसे बड़ी बात कि बुद्ध जो हमें शांति का एक संदेश देते हैं, आज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बुद्ध का जो बुद्ध पूजे जाते हैं सिर्फ अपने इसी वजह से. और कौन आजकल के टाइम में हम जहाँ योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय में तो और भी इसकी प्रासंगिकता है. जब देश में जो हमारा वैश्विक समुदाय देखे कितनी कठिनाइयों से जूझ रहा है, ऐसे समय में बुद्ध हमको प्रासंगिक बनाते हैं.
ट्रू, peace is so much required these days where wars are going on and everybody, every nation is promoting nothing but peace today. And let's talk about some more things regarding Gautam Budh. He passed away and attained Nirvana, release from the cycle of rebirth after 45 years of teaching. And Budh Purnima is a time to meditate, practice mindfulness and embrace the values of kindness, compassion and inner peace, principles that transcend religious boundaries and promote universal well-being.
बुद्ध पूर्णिमा पर बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आज इस अवसर पर बोधगया में बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालुओं की उपस्थिति है. और जैसा कि हमने बात ही की तन्वी कि ये मौका ही ऐसा है, बुद्ध जिनसे हमें इतनी बड़ी बड़ी जो है सीख मिली है, आज मतलब ऐसा हमारे पास मौका है उनको सेलिब्रेट करने का और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती पर भक्ति भाव, धार्मिक हर्षोल्लास तथा धूमधाम से दार्जिलिंग पहाड़, तराई व डुअर्स के विभिन्न इलाकों में आज मनाया जा रहा है. दार्जिलिंग पहाड़ में बौद्ध व हिंदू दोनों समुदाय वर्षों से बुद्ध पूर्णिमा का एक पर्व साथ मिलकर मनाते आ रहे हैं. जहां तक दार्जिलिंग पहाड़ का सवाल है, ये क्षेत्र नेपाल तथा भूटान की सीमा से सटा इलाका है तथा बौद्ध मत का यहाँ काफी प्रभाव है. उत्तर बंगाल क्षेत्र में छोटे बड़े सैकड़ों, करीब 100 से अधिक बौद्ध मंदिर हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गुम्बा कहा जाता है. बौद्ध भिक्षुओं अर्थात लामाओं की संख्या भी यहां काफी है.
बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ उत्तर बंगाल के पहाड़ी, तराई व डुअर्स क्षेत्र में आज पालन किया जा रहा है. तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2569वीं जन्म जयंती के अवसर पर विगत 3 दिनों से यहां के सभी प्रमुख बौद्ध मंदिर अर्थात गुम्बा मठों में 3 दिवसीय विशेष पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है. दार्जिलिंग के प्रसिद्ध डाली गुम्फा, जापानीज टेम्पल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम मोनास्ट्री, कर्सियङ के तामाङ बौद्ध गुम्फा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मिरिक के बौद्ध गुम्फा, कालिम्पोङ के दूरबीन डाँडा बौद्ध गुम्फा, सिलीगुड़ी के तोरीबारी गुम्फा, भूटान सीमा से सटे जयगाउँ गुम्फा आदि में विशेष अनुष्ठान के बाद आज भव्य शोभा यात्राएं निकाली गयी, जिनमें हजारों की संख्या में तिब्बती, भुटिया, लेप्चा, तामाङ, शेर्पा, गुरुंग समुदाय के साथ हिंदू समुदाय के श्रद्धालुओं ने भाग लिया. शोभा यात्राओं में अनेक महिला पुरुषों ने अपने सिर पर बौद्ध धर्म ग्रंथों को लेकर ओम मणि पद्मे हुम अर्थात मणि रत्नों से भरिपूर्ण कमल पुष्प में समाहित ज्ञान की कामना करते हुए शहरों व नगरों की परिक्रमा की. भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पालकी में सजाकर बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के मंत्रों के साथ सत्य, दया, करुणा व प्रेम के संदेशों के साथ सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने परिक्रमा में भाग लिया. परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी, कर्सियङ.
Budh Purnima is being celebrated today in Leh Ladakh also with great religious fervor. We have a report from our correspondent.
Along with the rest of the Buddhist countries, the auspicious birth and the enlightenment day of Lord Gautama Buddha is being celebrated at Leh Ladakh. Despite the current ceasefire situation at the borders, the special day is celebrated with full religious fervor, but as proposed by the district administration, this year the Buddha Jayanti celebration was brief with small gathering at the sacred Dharma Center. The function started with observing 2-minute silence in honor of those who received recently lost their precious life in border conflict. Being one of the major followers of Mahayana Buddhism, Buddhists in Ladakh celebrate the day Vaisakh Purnima by organizing special gatherings and seminars on the life of Buddha and his teachings. As usual, this year, Ladakh Buddhist Association and All Ladakh Gonpa Association organized the function at Dharma Center Choglamsa, where people gathered for the brief celebration. The function on Buddha Purnima started this morning with procession of sacred Buddhist text. His Eminence Bakula Rangdol Nyima Rinpoche graced the function as chief guest. Rinpoche, while speaking about the life and teachings of Lord Buddha, mentions Dhammapada, the collection of sayings of Buddha in verse form and one of the most widely read and best known Buddhist scriptures. Apart from this, monks from Phyang Monastery offer special recitation and pray for the world peace and harmony. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद न केवल प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक विशेषता को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने का माध्यम बनी है, बल्कि लाखों कारीगरों, शिल्पियों और उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त जरिया भी साबित हुई है। इस योजना को देश के कई अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है, जो देश दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। अब प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीपी में शामिल उत्पादों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक विशेषताओं और उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिली है। इससे न सिर्फ स्थानीय शिल्पियों और उद्यमियों को रोजगार मिला है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। प्रदेश के एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ओडीओपी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें बागपत के कृषि संबंधी उपकरण, सहारनपुर के होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद के प्रसंस्कृत खाद पदार्थ, गाजियाबाद के मेटल उत्पाद तथा टेक्सटाइल एवं अपैरल उत्पाद, अमरोहा के मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा के पेठा उद्योग एवं सभी प्रकार के फुटवेयर, हमीरपुर के मेटल उत्पाद, बरेली के लकड़ी के उत्पाद, एटा के चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर का ब्रश एवं उससे जुड़े उत्पाद और बलिया का सत्तू उत्पाद शामिल है। अमरोहा की जिलाधिकारी नीति गुप्ता वत्स ने बताया कि अमरोहा के ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स को पहले ही ओडीओपी उत्पाद में शामिल किया गया था, अब मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट को भी शामिल किया गया है। इससे देश और विदेश में अमरोहा और यहाँ के उत्पादों को नई पहचान मिलेगी, साथ ही इससे अमरोहा तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की ओडीओपी योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत योगदान सुनिश्चित कर रही है, या प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार ने ओडीओपी उत्पादों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत शिल्पियों को प्रशिक्षण, ऋण और विपणन सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ प्रदर्शनी, मेले, ई मार्केटिंग के माध्यम से उन उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया गया है। वहीं जिलाधिकारियों की निगरानी में एक्सपोर्ट प्रमोशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जीआई टैगिंग और डिजाइन डेवलपमेंट आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे उत्पादों की पहुंच बढ़ी है और प्रदेश में निवेश और उद्योग को नई रफ्तार मिली है। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Indian cricket great Virat Kohli has announced his retirement from Test cricket, bringing down the curtain on a stellar 14-year journey in whites. Widely regarded as one of the modern greats of the game, Virat took to social media to share the news with fans and reflect on his journey in the longest and most traditional format of the sport. His announcement marks the end of an era in Indian Test cricket. We have a report.
a titan of the modern era. Virat Kohli's test legacy is etched in Indian cricket history. In his 14-year test career, Virat scored 9,230 runs in 123 matches at an average of 46.85, becoming the fourth highest run scorer for India in the game's longest format, only behind the legendary trio of Sachin Tendulkar, Rahul Dravid and Sunil Gavaskar. Making his debut in 2011 against the West Indies, Virat took over the captaincy 3 years later and led India in 68 tests, the most by any Indian, winning 40 matches, drawing 11 and losing just 17. With a win percentage of 58.82%, the batter remains India's most successful red ball captain and as the fourth most successful test captain overall, behind Graham Smith, Ricky Ponting and Steve Waugh. Under Virat Kohli's captaincy, India won a series in Australia for the first time in 2019. His final appearance in whites came earlier this year during the Border Gavaskar Trophy, which Australia won 3-1. Virat's decision comes days after Rohit Sharma announced his test retirement, with Shubman Gill emerging as the leading contender to replace him as captain. Virat had earlier bid farewell to T20 internationals after lifting the 2024 T20 World Cup. India batting superstar is expected to continue in ODI cricket. With Virat Kohli's exit, Indian cricket turns a new page, but his legacy will continue to inspire generations to come. Swati Rakheja, Sports Desk.
महिला क्रिकेट में भारत ने तीन देशों की एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। कल भारतीय टीम ने कोलंबो में श्रीलंका को 97 रन से हराया। टूर्नामेंट की तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका है।
Moving on to business news, in the Indian stock market, the bulls took over Dalal Street today. Both the benchmark domestic equity indices ended at their highest closing levels of 2025, buoyed by ceasefire agreement between India and Pakistan and global cues, including announcement of trade truce between United States and China. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rallied 2975 points to close at 82,430. The National Stock Exchange Nifty 50 zoomed 917 points to settle at 24,925.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा पर भी ले चलेंगे और उस दिन घटित घटनाओं को भी याद करेंगे। इसी कड़ी में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर।
In today's episode, we remember the revolutionary freedom fighter Bal Krishna Hari Sapekar, who was martyred on the 12th of May 1899. Bal Krishna, along with his brothers Damodar Hari Sapekar and Vasudev Hari Sapekar, popularly known as the Sapekar brothers, and accomplices Mahadev Ranade and Sathe, assassinated British official W.C. Rand and his military escort on the 22nd of June 1897.
Balkrishna was born in Pune, Maharashtra in 1873. The passionate speeches of Bal Gangadhar Tilak stirred up a strong feeling of nationalism in him. When the bubonic plague hit India in 1896-97, the government set up a special plague committee for managing the pandemic. The British Plague Commissioner, W.C. Rand, unleashed a reign of terror in the name of fighting the epidemic through atrocities over quarantines, segregation camps and plague hospitals. He ordered indiscriminate burning of properties, violated private domains, and committed outrages on women.
The Sapekar brothers decided to kill Rand to free Pune from his terror. On the 22nd of June 1897, the Diamond Jubilee of the coronation of Queen Victoria was celebrated in Pune. As planned, Damodar Hari waited at the gate of the government house, and as Rand's carriage emerged, he ran 10 to 15 paces behind it. As the carriage reached the yellow bungalow, Damodar made up the distance and called out, "Gondia Alare," a predetermined signal for Balakrishna to take action. Damodar Hari undid the flap of the carriage, raised it, and fired at Rand, who succumbed to his injuries on the 3rd of July, 1897. Balakrishna shot Rand's military escort, Lieutenant Ayerst, who died on the spot.
The Sapekar brothers, Mahadev Ranade and Sathe, were caught. Damodar Sapekar was martyred on the 18th of April, 1898. Vasudev Hari on the 8th of May, 1899, Mahadev Vinayak Ranade on the 10th of May 1899, and Balkrishna Hari on the 12th of May 1899. Sathe, though a juvenile, was sentenced to 10 years rigorous imprisonment. We salute the great freedom fighter.
Remember freedom fighter Rosamma Punnoos, who was born on the 12th of May 1913 at Kanjarapalli, Kerala. Younger sister of the famous freedom fighter Akkamacharyan, popularly known as the Jhansi Rani of Travancore, Rosamma was active in the freedom movement and was jailed for about 3 years.
Rosamma joined politics and became the first person to be sworn in as a member of the Kerala Legislative Assembly. Punnoos was also the first pro tem speaker of the Kerala Legislative Assembly. She had also served as the president of the Kerala Mahila Sangham and chairperson of the Plantation Corporation.
In 1987, she was elected to the state legislature from Alappuzha, and till stepping down as a member of the Kerala Women's Commission in 1998, she was active in the political and social spheres of the state. Rosamma Punnoos died on the 28th of December 2013. We pay tribute to the great Indian.
We remember freedom fighter Banamali Ghasi, who died on the 12th of May 1943. A resident of Koraput, Odisha, Ghasi was involved in the non-cooperation and civil disobedience movements. He took active part in the Quit India movement in Odisha in response to the nationwide call of Mahatma Gandhi. Banamali Ghasi, with other agitators, was arrested and detained in the Navarangpur jail.
There, he contracted a severe disease due to the adverse unhygienic living conditions and lack of medical care. Under these circumstances, he and other political prisoners were shifted to Koraput District Jail, where Banamali Ghasi died on the 12th of May 1943. We salute the great martyr.
वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू. ये कोयल और बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इनका रस कौन जाने. आज आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि है. प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है. उनकी मुख्य रचनाएं हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, इतने पास अपने चुका भी हूं नहीं मैं आदि.
Okay, and we are also remembering today Katharine Hepburn. Today is her birth anniversary, an American actress whose career as a Hollywood leading lady spanned 6 decades. Katharine received 3 Academy Awards for her performances in Guess Who's Coming to Dinner, The Lion in Winter, and On Golden Pond. So let's hear a few words from her only Academy Awards appearance.
I am naturally deeply moved. I'm also very happy that I didn't hear anyone call out, "It's about time." I am the living proof that a person can wait 41 years to be unselfish.
आज भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक की जयंती है. वे कई टेलीविजन धारावाहिकों के साथ साथ फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं. उन्हें छोटे पर्दे के प्रसिद्ध व्यंग धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका की भूमिका के लिए याद किया जाता है.
तो किधर जाना है? अच्छा ठीक है, चलो लोनावला जाके आए. बस
नहीं सेठ जी, लोनावला नहीं जाना है.
तो
बचपन में मैं फिल्मों में कश्मीर बहुत देखता था. तब से मेरी कश्मीर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है. सेठ जी, अगर आप मुझे कहीं घूमने भेजना चाहते हैं ना, तो कश्मीर भेजिए.
नड्डू काका, मुझे भी एक ज्योतिष ने बताया था.
क्या?
कि जेठालाल आपकी वजह से एक दिन वृश्चिक राशि का आदमी सिर्फ लोनावाला घूमने जाएगा.
आज विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के कुशल तथा परिपक्व लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति की जयंती है. जी कृष्णमूर्ति मानसिक क्रांति, बुद्ध की प्रकृति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इन विषयों के विशेषज्ञ थे. उन्होंने कहा था कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है और उस तक किसी भी औपचारिक धर्म, दर्शन अथवा संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता, उसे आप स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं.
Today we are also remembering Erik Erikson on his death anniversary. He is a German-American child psychoanalyst and visual artist, and he is the person who coined the phrase Perry's identity crisis. Apart from that, today is the death anniversary of Perry Como, an American singer, actor, and television personality. Let's hear a beautiful track titled Magic Moments by him.
Magic moments when two hearts are kept. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और तन्वी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।